कोई कंपनी वाले होंगे इधर पिछले अभी हर गुरुवार को प्रोग्राम होता है उधर हर गुरुवार को मोयरा रोड मंदिर से प्रोग्राम होता है उधर उपासना स्कूल सिटी में एकदम सिटी का सेंटर बाहर कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं चलो बाहर ही चलो हाँ वो गर्मी भी लगेगा वो भी सोचते दोनों है गार्डन में छाया और नीचे से चीटी वगैरह आएंगे आप पहले सोच के रखो ये सब मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता चलो फिर
डरते नहीं
है ठीक है ठीक है सर का डर हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या शांति सर्वार्था ये दूसरा अध्याय का 14वां श्लोक है 14 चैप्टर शाम का डर दिखा दिया अभी कैसे चलो गार्डन से ही अच्छा है वरंडा बेटर चलिए ये गुण क्या है गुणों की संगति करने से क्या परिणाम होगा इससे मुक्त कैसे हो सकता है व्यक्ति अनेकों प्रश्न उत्पन्न होता है कारणम गुण संज्ञ से ये शब्द से तो इसलिए पुरुष प्रकृति स्तो ही कारण भुंक्ते प्रकृति जय गुणान कारणम गुण संघस्य सदस्य जोनि जन्मशु ये श्लोक का कनेक्शन के साथ ये पूरा 14वां अध्याय का वर्णन हुआ है ये 22वां श्लोक है 13वां अध्याय का 13 श्लोक का 13:22 का साथ ये 14वां अध्याय का कनेक्शन है ठीक है हाँ तब भगवान बिना अर्जुन का प्रश्न का प्रेरणा से वो स्वयं बोलना शुरू करते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि भूय मतलब क्या है दोबारा यानी पहले कहा गया इस बात को कहां कहा गया है पहले कहां गया गया है गुह्य परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम इसका मतलब क्या है ज्ञानों में ये ज्ञान श्रेष्ठ है 13वां अध्याय में 22वां श्लोक में जो बताया हूं उसी को फिर वापस बताऊंगा मैं और ये ज्ञान जो है ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम अनेक प्रकार की ज्ञान क्रियाओं में ये सबसे उत्तम ज्ञान है। यज्ञात्वा मुने सर्वे, एक बार ये जानने के बाद सारे मुनि पराम सिद्धिम इतो गताः, पराम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, टॉप मोस्ट सिद्धि को प्राप्त करते हैं। एक प्रश्न है, ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं ये क्या नौवां अध्याय में जो भगवान ने ज्ञान दिया कौन सा गुह्य ज्ञान, उससे श्रेष्ठ है? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, तक भगवान ने नौवां अध्याय में बताया मन मनाभ हो मत भक्तो मध्याची, उससे भी उत्तम है ये ज्ञान, चौदह अध्याय का ज्ञान। हाँ अच्छा है, लेकिन फिर भी मन मनाभ हो मत भक्ता, ये जो ज्ञान है वो कौन सा है? राज विद्या राजगुह्यम, निश्चित रूप में उससे श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में उत्तम इसलिए है क्योंकि आपको पहले की 13वां अध्याय में जो ये प्रकृति और पुरुष किस प्रकार इन दोनों के संयोग की वजह से क्या क्या ये भावबंधन उत्पन्न होता है, इन सब चीज को जानने से व्यक्ति निश्चित रूप में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये सांख्य का भी महत्वपूर्ण है, यानी सांख्य ज्ञानों में, सांख्य में भी अनेकों प्रकार का ज्ञान है, उनमें से उत्तम ज्ञान को वर्णन किया जा रहा है। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलियन्ते न व्यतयन्ति च। इदम् ज्ञानोपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण करने के बाद मम साधर्म्यम आगता, साधर्म्य मतलब मेरा ही स्वरूप, मेरा स्वरूप को ही प्राप्त करता है। साधर्मी मागता सर्गेपि नोपजायन्ते, इसका मतलब क्या है? सर्ग के समय ना उपजायन्ते, फिर वापस भौतिक संसार में नहीं आता है। प्रलये न व्यतयन्ति च, जब प्रलय होगा तो उनका कोई नाश नहीं होता है। साधर्म्य मागता, इसके ऊपर श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं साधर्म्यम ये सूचित करता है सारूप्य मुक्ति को, इट रिफर्स टू सारूप्य मुक्ति। इसके ऊपर आगे सिद्ध करते हैं कि भगवान के धाम में जाने के बाद भी व्यक्ति का, जीव का अस्तित्व, उनकी इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व रह जाता है, रहता है। ऐसा नहीं कि आत्मा जो है परमात्मा में लीन होकर एकत्व को प्राप्त करता है। साधर्म का ये मतलब, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, one does not, however, lose his identity of an individual soul. It is understood from the Vedic literature that the liberated souls who have reached the transcendental planet to the spiritual sky always look to the lotus feet of the Supreme Personality. Gustav Praman, Shripad Madhva Bhashi ke upar adharit hoke, Baladev Vidya Bhushan, is shlok ko quote karte hai. Kya hai wo? Pashyanti Surayaha Ditiva Chakshuradatam Tad Diprasu Panyato. Kya hai wo? Pura shlok kya hai wo? उपनिषद का श्लोक पश्यन्ति सूरयः हाँ विष्णु यत् परमं पदम पहला कौन सा शुरुआत कैसे होता है उसका तद् विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः वो श्लोक कोट करते हैं पश्यन्ति पश्यन्ति मतलब क्या है देख रहे तो देखने वाला एक है जिसको देख रहा है वो अलग है और देखने की क्रिया तीसरा चीज है तभी तो ये शब्द हो सकता है देख रहा हूं मैं अगर किसी को देख रहा हूं जिस वस्तु को मैं देख रहा हूं जिस चीज को जिस देख रहा हूं या जिस व्यक्ति को देख रहा हूं वो मुझसे अलग होगा तभी देख सकता हूं तो इस श्लोक को कोट करते हुए बलदेव विद्याभूषण स्थापना करते हैं साधर्म मतलब यही स्थापित किया जाता है भगवान की धाम में जाने के बाद भी जीव का अपने व्यक्तित्व रह जाता है व्यक्तित्व इन आइडेंटिटी को क्या बोला जाता है हिंदी में क्या पढ़िए अनुवाद तात्पर्य
पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक क्षमता प्राप्त कर लेता है
हाँ
और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वो स्वरूप समाप्त नहीं होता वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई कितने को प्रेम भक्त में लगी रहती है चाहे मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता
बस ये हो गया इसके विषय में इतना है नेक्स्ट तद् विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः
पंचरात्रि बुक में है
हाँ इसी से शुरू होता है सब हवन का सब विधि में देख लीजिए हाँ इन्हीं में से होगा अगर आप माधुर में ठीक है आपका अस्तित्व जिस भगवान के जो पांच प्रकार का रस है शांत दास साथ की बात से लिए इनमें से आप जिस प्रकार के संबंध में भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं उसी चीज को प्राप्त करेंगे हाँ जो इधर आप करते हो उसी प्रकार का सेवा है भगवान के लिए भोग बनाना है फूल माला हाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है संकीर्तन भी है हाँ आज आज क्लास में आप सुने ना कि ये वो जो सखियां हैं उनका अलग अलग कैटेगरी है ठीक है लेकिन वो सब कौन है वो जीव नहीं है जीव नहीं है सखियां जो है स्वयं राधा रानी के तनु शरीर का विस्तार है तो वो हम नहीं बन सकते लेकिन उनके अनुगत्य होते हुए उनके अनुगत्य में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अचानक वो प्रश्न कैसे आ गया आपका
इसमें जो बात आई है कि इसका वो स्वरूप समाप्त नहीं होता
हाँ
ये तो स्वरूप समाप्त होने वाली बात तो मायावादी लोग कहते हैं कि वो हम एक हो जाते हैं उनके ये तो बात है ही नहीं कि स्वरूप समाप्त होता है इसका
रहती है
उस चीज को फिर से द्वारा इसमें कहकर क्या कहना चाहते हैं
नहीं तात्पर्य में कहा गया है देखिए मान लीजिए श्लोक में एक विशेष शब्द होता है जिसके ऊपर वही सिद्धांत को फिर से स्थापना करने के लिए उस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए आचार्य उस शब्द को व्याख्या करते हैं तो बलदेव विद्याभूषण इस पूरा श्लोक में साधर्म्यम उस चीज का व्याख्या श्रील प्रभुपाद सीधा बलदेव विद्याभूषण का इसका डायरेक्टली लिखते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम बलदेव विद्याभूषण। ठीक है, साधर्म्यम तो मायावादी लोग सकते हैं, साधर्म्य मतलब बस एक ही हो गया, उसका तोड़ मोड़ करके ऐसा व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उस शब्द के ऊपर उन्होंने इस प्रकार व्याख्या करके दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट। ये वही तो
एक चीज और भी थी, जब वहां जाते वहां पे ना कोई जन्म होता ना मृत्यु होती, तो जो सखियों की उम्र उन्होंने 14 साल की बताई, जो लता सखी 14 साल 27 महीने को 27 दिन और कितने बताई, वो कैसे उन्होंने कैसे उसका वर्णन है, उतनी की ही रहेंगी 14 साल की एज कैसे आई, कहीं ना कहीं जन्म हुआ तब तो 14 साल की
प्रकट लीला में राधा 27 दिन बड़ी है,
देखिए मेरा प्रश्न है तो षष्ठी अष्टमी 2 दिन का फर्क है,
तो बोले कि कोई कोई ऐसा भी बोलते 27 दिन का फर्क है और कोई कोई बोलते 2 दिन का,
नहीं ये सब चीजें बड़ा ये इसके ऊपर कोई चर्चा करते करते कोई अंत नहीं है इसका, एक उधर से एक इधर से क्या आ जाता है। देखिए आध्यात्मिक जगत में लोगों के उम्र मतलब हर चीज भाव के ऊपर है, एवरीथिंग इज अंदर लेवल ऑफ भाव। ठीक है, जो भक्तों के हृदय में जो भाव है, जो 14 साल के वो उम्र के अनुसार जो स्वभाव होता है, वो स्वभाव के अनुसार जो गुण होता है, जो रूप होता है, या कृष्ण की उस प्रकार की सेवा के लिए उपयुक्त जो गुणों से युक्त, उनका ऐसा वर्णन रहता है। ऐसा नहीं कि उनका नियमित उधर नहीं यत्रापि समयः भजे श्वेतत्वम्। आध्यात्मिक जगत में जो है काल, वो जिस भौतिक जगत में काल है उस प्रकार का काल नहीं है, वो सनातन है, एटर्नल लाइफ, तो उसका अंदाज भी हम नहीं लगा सकते। क्यों? हमारी बुद्धि भौतिक है, हमारी मन भी भौतिक है, तो हम अपनी भौतिक बुद्धि मन में कुछ आध्यात्मिक चीज का कल्पना कैसे कर सकते हैं? शास्त्र में जो इन्फॉर्मेशन है उसको अनावृतित शब्दाद अनावृतित शब्दाद अनावृतित शब्दाद बार बार दोहराने से ये जो ज्ञान है ये अपने आप प्रकट होगा हृदय में, खास करके आध्यात्मिक जो ज्ञान, जो उधर कैसा होगा क्या होगा, ये वृंदावन जो है कमल के बराबर है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है कभी बड़ा होता है, इसका लेंथ है, ये सब चीजें क्या है, दिस इज ऑल क्वेश्चन ऑफ रियलाइजेशन। कैसे होगा रियलाइजेशन? जो शास्त्रों में है इधर बार बार उनको श्रवण करने से होगा। क्लियरली 2 प्रकार का डिस्क्रिप्शन है शास्त्र में, एक है सांख्य है जहां इस पर वर्णन है, अभी चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम बुद्धि लगा सकते हैं, अपनी जो बुद्धि है बुद्धि के द्वारा समझने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण बांसुरी क्यों बजाते हैं, गिटार क्यों नहीं बजाते हैं, तो ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि मैं दुखी क्यों हूं, इधर प्रश्न का एरिया ये है। सो सांख्य के संबंध में प्रश्नोत्तरी होगा, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं, बुद्धि के द्वारा प्रयोग बुद्धि प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम योग की ओर जाएंगे, योग मतलब ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर्स की ओर जाएंगे, तो उधर जो चीज है वैसे एक्सेप्ट करना, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट एज इट इज। और ये कैसे समझेंगे? जब भगवान चाहेंगे तभी समझेंगे। तो इसके लिए शास्त्र कहता है एक पॉइंट आने पर केवल पुनरावृत्ति करो, बार बार बोलते जाओ, बार बार बोलते जाओ, ये हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर सब कुछ है, लेकिन बार 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 बोलने से अपने आप हृदय में ये जो ज्ञान है वो प्रकट होगा। एक व्यक्ति ने मैं शुरुआत में ऐसे तिलक था वो, मैं ज्वाइन नहीं किया था वो टाइम में, ट्रेन में जा रहा था जपा करते हुए जा रहा था, बंगाली लोग तो एकदम इसमें एक्सपर्ट रहते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने में, तो उन्होंने पूछा कि राधा रानी जो है कृष्ण के लेफ्ट साइड में क्यों है, राइट साइड में क्यों नहीं है, ऐसे प्रश्न होता है। ठीक है, उसका कोई शास्त्रों में कोई रसिक आचार्य उनको जवाब दिया होगा वट एवर इट इज, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। किसी ने पूछा कि कृष्ण जो है ऐसा ही क्यों किया, ऐसा ही क्यों किया, नहीं ये लीला है, लीला में ऐसा ही क्यों किया, ऐसा किया बस, उसका उत्तर भी होगा तो और एक कथा होगा, तो उधर भी प्रश्न पूछेगा ऐसा क्यों है। इट इज जस्ट वी हैव टू एक्ट एंड बी हैप्पी विद दैट। ठीक है, थर्ड श्लोक। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, ये पूरा जगत का सृष्टि का बीज श्लोक है, मूल कैसे सृष्टि हुआ। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ल्ड। मम योनिर् महद् ब्रह्मा, मम योनिर् महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददामि अहम्। तो महत् ब्रह्मा, वो भागवतम क्लास, इंग्लिश वाला भागवतम क्लास में इसी बारे में बता रहे थे कि प्रधान, तो चार्ट देखा ना, कल लिखा ना, उसके अंदर जो प्रधान जो है, जो तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था है, सारा जितने भी भौतिक चीजों की अव्यक्त अवस्था है, उसको महत् ब्रह्मा भी कहा जाता है। और भगवान इसके ऊपर दृष्टि करते हुए, दृष्टिपात करते हुए क्या करेंगे उसके ऊपर, उसके अंदर गर्भम ददामी, गर्भ प्रदान करते हैं। तो महत् ब्रह्म, सगुण ब्रह्मन और प्रधान, ये तीनों एक ही चीज को इंगित करता है। तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, मैं उसको गर्भ, भगवान उनके अंदर गर्भ कैसे प्रदान करते हैं, दृष्टि के द्वारा, बाय साइट। वेल्डिंग चल रहा है, चिंता मत करो। 24 एलिमेंट्स, 24 तत्व अव्यक्त रूप में रहता है महत् ब्रह्म के अंदर, आर द ग्रेट ब्रह्मन मेटीरियल नेचर। आखिरी पैराग्राफ पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ।
इच्छु अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न
है,
लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे, इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वो प्रकृति से उत्पन्न होते उचित होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्ण कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्ण कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के
ये फेमस उदाहरण है, बहुत जगह आता है ये। वैष्णव आचार्य ने उदाहरण देते हुए सांख्य दार्शनिकों को उन्होंने खंडन किया है। कौन किस प्रकार के सांख्य दार्शनिक है, नास्तिक सांख्य, नास्तिक कबीला। आप सबको मालूम है षड दर्शन क्या है, 86 फिलॉसफीज, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये छह, जिसको षड दर्शन बोला जाता है, इट्स कॉल्ड षड दर्शनस। ये षड दर्शनों में एक दर्शन, एक फिलॉसफी का नाम है, क्या है, सांख्य। तो परसों दिया था ना इंग्लिश भागवतम क्लास, तो परसों भागवतम क्लास में उसको उल्लेखन किया था कि नास्तिक कपिला और देहयुति कपिला और कृष्ण का सांख्य, तीनों का नाम है सांख्य, तीनों का दर्शन का सांख्य। कृष्ण भी उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, कहा दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक से 30वां श्लोक तक। और नास्तिक कपिल वो भी सांख्य दर्शन है उनका भी, और देवयुति कपिल उनका भी सांख्य दर्शन है। लेकिन अभी ये जो नास्तिक कपिल है वो क्या कहते हैं, ये सब जो भी उत्पन्न हो रहा है वो केवल प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है, वो प्रकृति के पीछे परपुरुष को स्वीकार नहीं करते, दे डोंट एक्सेप्ट परपुरुष। तो उनको खंडन करते हुए वैष्णवाचार्य उदाहरण देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि चावल में से बिच्छू उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत पुराना चावल होता है लेकिन चावल से नहीं उत्पन्न हो रहे, कोई मां बिच्छू आके उधर उसके अंदर अंडे छोड़ दिए थे, वो अंडे से उत्पन्न हो रहे। तो अस्तित्व में जब तक पिताजी का वीर गर्भ में प्रवेश नहीं करता, मां के गर्भ में बच्चे का पैदा नहीं होता, मां के गर्भ में बच्चा पैदा नहीं होता है। वैसे ही केवल एक भौतिक प्रकृति से सब कुछ आ रहा है, ये लोग जो है ये नास्तिक सांख्य बोला जाता है, जिसको फिलॉसफी के रूप में थोड़ा सा तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करने वाले कौन है, कम्युनिस्ट। एक बार प्रभुपाद जी का चर्चा हो रहा था कम्युनिस्ट का फिलॉसफर के साथ, कम्युनिज्म जो प्रस्ताव रखते हैं, बहुत उधर के लीडर थे, कम्युनिस्ट लीडर थे रशिया में। चर्चा में प्रभुपाद जी ने कहा, ये देखो ये सब भगवान की सृष्टि है, भगवान को जैसे सब कुछ प्रकट हुआ है, सृष्टि करता है। तो उन्होंने कहा नहीं भगवान भगवान नहीं है। उन्होंने क्या कहा, ये सब कुछ नेचर है, एवरीथिंग इज नेचर। तो प्रभुपाद ने उनको एक प्रश्न पूछा, हूज नेचर इट इज। जब नेचर बोलते हो किसी ना किसी का स्वभाव है ना, नेचर मतलब स्वभाव, किसका है नेचर, हूज नेचर। वो चुप हो गया, आगे बात नहीं की। भागवतम में पहला स्कंद में एक श्लोक की तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो षड दर्शन को जानता है वही व्यासासन कर बैठ सकता है। आपने पढ़ा लाइन को, सीधा एक लाइन है, पहला स्कंद के पहला अध्याय में ही है तो भागवत में दिखा दूंगा, फर्स्ट कैंट लेके, जहां नैमिषारण्य के ऋषि सुत गोस्वामी का गुणगान करते हैं, अन्येच मुनय सूता परावर विदो विदुहु वेद तत्व सौम्य तत्सर्व तत्तस्तुग्रहात् भूयुस्तिग्धस्य शिष्यस्य गुरोः गुह्यमप्युत। इसके पहले वाला श्लोक है, अन्येच मुनय सूता परावर विदो विदुहु। उस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं इस बात को, आ गया फैन अरे इसके लिए इतना कुछ तो गड़बड़ है, शॉर्ट है अंदर कुछ प्रॉब्लम। अभी मेरे ख्याल से कोई ना कोई फैन बंद करके देखे, बहुत लंबा काम है। क्या चल रहा है, चल रहा है, ज्ञान वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान भादरायण। ये श्लोक में 117 वन कैन सिट ऑन द व्यासासन ओनली आफ्टर बींग कन्वर्सेंट इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी सो दैट वन कैन प्रेजेंट फुल्ली द थीसिस्टिक व्यू श्रीमद भागवतम इन डिफेंस ऑफ ऑल अदर सिस्टम्स। ये सत्य घटना है। ये सदी करता है, एक बार मायापुर में भागवतम क्लास दे रहे थे प्रभु जी, तो आके उन्होंने शुरू किया भागवतम क्लास को कि आप जानते हो भागवतम व्यास आसन के ऊपर कौन बैठ सकता है। तो सब लोग चुप थे, कोई पुकार नहीं। तो वही व्यक्ति व्यास आसन के ऊपर बैठ सकता है जिसको षट दर्शन मालूम है। तो उन्होंने कहा कि किस किस को षट दर्शन का नाम मालूम है, सब चुप रहे, किसी को नहीं मालूम था। तो कहा मैं कहता हूं, उन्होंने बोलना शुरू किया, तो वो नोट करके आए थे कागज, वो उड़ गया। ये सच घटना है मेरे सामने हुआ। होटल में ज्वाइन किया तो बहुत पहले की बात है। वो ढूंढ रहे
कागज उड़ गया, वो कैसे बताएं तुम।
तो उनको बोलना है ना, वो याद तो है नहीं उनको, तो बोलने लगे बुद्धि संपत्ति। तो इसमें जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दार्शनिक को प्राप्त करने के लिए ये जनरली ये दिस इज द थिंग विच इज यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट षट दर्शन। ये षट दर्शन ए है, अनेकों जो ऋषि हुए वो लोगों ने उपनिषदों से एक प्रश्न पूछा, यानी उपनिषदों ने एक प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास किया। क्या है वो प्रश्न? जन्मादि अस्यतः, सब कुछ कहां से उत्पन्न होता है? इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए उपनिषद से खोज किया। तो ये छह ऋषियों ने जब यही प्रश्न उपनिषदों से पूछा तो छह प्रकार के कंक्लूजन्स आए। एक व्यक्ति ने कहा कि अणु ही सारे चीजों का स्रोत है। बाद में किसी ने कहा नहीं नहीं, अणुओं का जो मिश्रण है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यही सब कुछ का स्रोत है। ये वैशेषिक हुआ, पहला वाला जो न्याय है, न्याय गौतम, गौतम ऋषि ने कनाडा वैशेषिक सूत्र, वैशेषिक ये दूसरा है। अणु सब चीज का स्रोत है, एटम इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और वैशेषिका अणुओं का मिश्रण ही सब चीज का स्रोत है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। उसका प्रस्ताव रखने वाले कौन है? कनाडा। और सांख्य कपिल के द्वारा, नास्तिक कपिल के द्वारा, उनका कहना क्या है? प्रकृति ही सब कुछ का स्रोत है, मेटीरियल नेचर इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कपिला सिद्धांत का नाम सांख्य। और चौथा है योगा, प्रकृति सब कुछ का स्रोत है। चौथा कौन सा है? योगा, पतंजलि। उनका क्या सिद्धांत है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल, परमात्मा लिखिए, लेकिन ये परमात्मा में जो मूल रूप परमात्मा उनमें अंतर है, इसको कैसे प्रस्तुत करना है मुझे नहीं मालूम हिंदी में, हाउ टू एक्सप्लेन दैट इन हिंदी। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ऐसे क्यों बोलते हैं? अच्छा, गुस्से में। हाँ, वैश्विक हो सकता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वैश्विक चेतना। पतंजलि योगा, और पांचवा है, पांचवा पांचवा पद पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा या कर्मकांड, न्याय तीनों पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या कर्मकांड। जैमिनी, हाँ कर्म ही सब कुछ का स्रोत है, ये उनका सिद्धांत है, कर्म इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हाँ जैमिनी का ये तीन नाम है एक ही चीज का, हाँ जैमिनी का, कर्म ही सब कुछ सबका स्रोत है, कर्म इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और छठा उत्तर मीमांसा या वेदांत, इसका रचना किसने किया? व्यास, व्यास ने। सबका स्रोत क्या है? ब्रह्म, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परब्रह्म। ठीक है, एनी हाँ
नाम की कमल तो बाद में होती है, और छठ दर्शन सारे वेदों में जो तीन प्रस्थान है, नया प्रस्थान में से एक छठ दर्शन है, वेदों के जो तीन प्रस्थान है उसमें से नया प्रस्थान में छठ दर्शन है, और इसी छठ दर्शन में कपिल तो बाद में हो गया, तो उस कपिल का संकेत जो नास्तिक कपिल का संकेत कैसे वर्णन इसमें आया?
नास्तिक सांख्य का जो ये है वो न्याय प्रस्थान में आता है, क्या प्रॉब्लम है इसके लिए? आपका प्रश्न मुझे समझ नहीं आया।
न्याय प्रस्थान का जो छठ दर्शन ये भाग है, ये सारे वेदों से आया हुआ है, इसमें नास्तिक कपिल का सांख्य कैसे है? वेदों में आया है कि बाद में आया है? वेदों के तीन भाग है, तीन भाग है वेदों के, एक तो न्याय प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, उसमें से न्याय प्रस्थान में ये षट दर्शन आता है।
ब्रह्म सूत्र जो भी रीजनिंग होता है ना वो न्याय प्रस्थान कहा जाता है, एनी रीजनिंग। मान लो कि कल कोई दार्शनिक आया, उसने वो क्वालिटी का कोई प्रस्थान कर, कोई रचना किया है कोई फिलॉसफी को, तब उसका भी जुड़ जाएगा उसके अंदर।
मेरा प्रश्न है कि ये कपिल नास्तिक कपिल जो है सांख्य जो बोल रहे हैं, तो बाद में वेदों का रचना होने के बाद आया।
हाँ, अब मैं कभी समझ गया, ये जो वेद है मैंने जो तीन प्रस्थान बताया ये इसके अंदर काली श्रुति जो है वो ओरिजिनल वेद है, बाकी सब तो बाद में रचना किया गया है। चैतन्य चरितामृत है वो वैदिक ग्रंथ नहीं है? मेरा एक प्रश्न
है, लेकिन
वैदिक ग्रंथ नहीं है, वैदिक ग्रंथ है ना, तो 1000 साल पूर्व चैतन्य चरितामृत था, प्रकट नहीं था, वो स्मृति प्रस्थान में आ गया हो, है ना स्मृति।
स्मृति प्रस्थान का भाव नहीं,
ये षड दर्शन की जो प्रस्तुतिकरण है वो फिलॉसफी है, वो न्याय रीजनिंग लॉजिक रीजनिंग रहता है।
छह न्याय उन्होंने किस आधार पे ब्रह्म सूत्र पे?
उपनिषद, उपनिषदों के ऊपर आधारित होते हुए अपना अपना सिद्धांत को प्रश्न किया, बेस्ड ऑन द उपनिषद। इसने आप छह दर्शन को खोल के देखो उधर सब उपनिषद का श्लोक कोटेड है। न्याय प्रस्थान ओरिजिनल वेद नहीं है, हाँ बस समझ, ओरिजिनल वेद नहीं है, लेकिन वो वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत माना जाता है क्योंकि वो वेद को प्रमाण मानते हैं। वेद को प्रमाण मान के रचना किया गया कोई भी ग्रंथ को वैदिक ग्रंथ ही कहा जाता है। हाँ आर्य समाज का एकदम निकृष्ट जो कर्म मीमांसा सिद्धांत है, कर्म मीमांसा के अंतर्गत एकदम लो क्लास कर्म मीमांसा मतलब आर्य समाज है। वेदों को प्रमाण मानते हैं, उनके साथ आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, इनके सिद्धांत गलत है उनका। एनी स्क्रिप्चर, जैसे आप वैदिक साहित्यों का 10 नाम अपराध में एक अपराध है ना, कौन सा है? वैदिक प्रमाण का ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स इन परस्यूंस ऑफ द वेदस, ऐसा अनुवाद है इसका। श्रुति शास्त्र निंदनम, श्रुति और शास्त्र निंदनम। नेक्स्ट, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्तिया तासां ब्रह्म महत्योनिर् अहम् बीज प्रदप्पिता। फोर्थ श्लोक, उसी का एक्सप्लेनेशन है, उसका अनुवाद खाली पड़ी है बस।
ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता खुदा हूं।
हम बीज प्रदप पिता, भगवान बीज प्रदान करने वाले हैं। हम बीज प्रदप पिता, नेक्स्ट। अभी पांचवां श्लोक में सत्वगुण रजगुण और तमोगुण तीनों के बारे में संक्षिप्त ज्ञान देते हैं। उसके बाद 6, 7, 8 में सत्व रजस तमा तीनों के बारे में छोटा सा वर्णन करते हैं। सत्वगुण का लक्षण क्या है, रजगुण का लक्षण क्या है, तमोगुण का लक्षण क्या है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। क्या होता है ये, बद्ध जाते हैं ये बद्ध जीव। हम बार बार इस बात को सुनते हैं बद्ध जीव करके, क्या है बद्ध, बद्ध जीव मतलब क्या है, गुणों से बंधा हुआ। क्या है वो तीन गुण, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण। वो एक पिक्चर भी है ना रूपा जी का न्यूज में, वो प्रकृति के तीन गुणों का तीन रस्सी है कि हम बंधे गए। संस्कृत में गुणा ये शब्द का और एक मतलब है, रस्सी करके माना जा सकता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशात्तगमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानज। उसका अनुवाद पढ़िए।
सत्वगुण अनुगुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं।
इसका मतलब क्या है सत्वगुण, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, निर्मलत्वात् का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्मलत्वात्?
भौतिक जगत में शुद्धतम होने के कारण,
भौतिक
जगत में शुद्धतम होने के कारण।
हाँ, ये निर्मल इसलिए है, रजस और तमस को नीचे के गुण माना गया है, लोअर मोड्स, और तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, सत्वगुण, इसलिए उसको क्या कहा गया है, तत्व सत्वम निर्मलत्वात्। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड निर्मलत्वात् प्रकाशात्मकम,
प्रकाशात्मकम प्रकाशित करता हुआ
प्रकाश,
नामयम किसी पाप कर्म के बिना,
किसी
पाप कर्म के बिना
प्रकाशकम,
प्रकाशित करता हुआ किसी पाप कर्म के बिना।
हाँ, प्रकाशकम मतलब क्या है,
प्रकाशित करता है,
प्रकाशित करता है, क्या प्रकाशित करता है,
पाप कर्मों से मुक्त करके प्रकाशित करता है,
इज इल्यूमिनेटिंग, ज्ञान ही बोल सकते हैं, ज्ञान को प्रकाश करने वाला। और नेक्स्ट धनामयम मतलब
किसी पाप कर्म के बिना,
किसी पाप कर्म के बिना पाप कार्य कम करता सत्वगुणी व्यक्ति। नेक्स्ट सुख संगे है ना बदनाथी, एक प्रकार का सुख और ज्ञान दोनों के द्वारा बंधा जाता है, भौतिक सुख और भौतिक ज्ञान क्या बंधा रहता है। तात्पर्य पड़ी प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं इसको।
प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं, कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, कोई दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। भगवदगीता की इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सत्वगुण का विचार किया गया। इस जगत में सत्वगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्धजीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सत्वगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सत्वगुणी माना जाता है। सुख का ये भाव इस विचार के कारण है कि सत्वगुण ने पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सत्वगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वो बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, अतः वे सत्वगुण में रहकर कर्म करने की दृष्टि आकर्ष होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रहती। वे बारंबार दार्शनिक वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मुक्ति के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंद कर।
ये सत्वगुण एक तरीके से बहुत अच्छा है क्योंकि उसके अंदर कोई व्यक्ति पाप ज्यादा नहीं करता है, सब कुछ है, लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है, ये सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति हो जाता है। तो इधर ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान, थोड़ा सा भौतिक ज्ञान, थोड़ा सा भौतिक सुख, उसके प्रति आसक्ति होने की वजह से उसके अंदर एक प्रकार का अहंकार आता है। ये अहंकार की वजह से वो वापस रजोगुण में जाता है। अगर सात्विक व्यक्ति भक्ति को स्वीकार नहीं करता है वो निश्चित रूप में अपने जीवन में वो रजोगुण के अंदर जाएगा, रजोगुण से तमस के अंदर जाएगा। बाद में ये श्लोक आता है, दसवां श्लोक, जिसके अंदर वर्णन है। क्या वर्णन है? कि कभी रजोगुण रहता है, कभी सत्वगुण रहता है, कभी तमोगुण रहता है। ये गुण जो है चेंज होता रहता है। अगर भक्ति करते हुए सत्वगुण को मेंटेन करते ऊपर नहीं जाने के लिए प्रयास नहीं करता है वो क्या होगा? उसका पतन निश्चित रूप में होगा, क्योंकि ये भौतिक आसक्ति सुख और ज्ञान के उसको ऐसा लगता है कि वो मैं जितना ज्ञानी हूं और कोई है नहीं, मैं एकदम सुखी हूं, देखो कितना भोग रहा है, दुख भोग रहा है। तो एक प्रकार का अहंकार आता है। ये अहंकार की वजह से व्यक्ति रजोगुण में चले जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ के बिगिनिंग लाइन में, द डिफिकल्टी हियर इज दैट व्हेन अ लिविंग एंटिटी सिचुएटेड मोड ऑफ गुडनेस ही बिकम्स कंडीशन टू फील दैट इज एडवांस इन नॉलेज एंड बेटर देन अदर्स। मैं अन्यों से मैं अच्छा हूं, आई एम बेटर। इन दिस वे बिकम्स कंडीशन, इस प्रकार वो बद जाता है और वो व्यक्ति जो जिसके अंदर इस प्रकार का अहंकार आया और आसक्ति हुआ, यह अहंकार और आसक्ति जो अस्तित्व में रजोगुण के लक्षण है, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। एकदम एक व्यक्ति में 100% सत्वगुण कभी हो ही नहीं सकता, 100% रजोगुण है, 100% तमोगुण है। गुणों का मिक्सचर तो होता ही है। भले ही व्यक्ति अधिकांश सत्वगुण में भी क्यों ना हो, उनके अंदर ये भौतिक सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति और उससे उत्पन्न अहंकार, ये दोनों रजस के कलमश है। एक परसेंट रजस और तमस होगा, नहीं तो कोई वस्तु टिकेगा नहीं जगत में। हर चीज हर वस्तु 100% सत्वगुण मतलब शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में सत्वगुण में अंतर क्या है, आपने सुना होगा शुद्ध सत्व करके, इसको वासुदेव सत्व भी बोला जाता है। उसमें और सत्वगुण में अंतर क्या है, बस अंतर यही है। जिस व्यक्ति के अंदर 100% सत्वगुण है उसको शुद्ध सत्व बोला जाता है। हो नहीं सकता था, इन द सेंस दैट जो मुक्त आत्मा है, मुक्त जीव है, उसकी बात कर रहा हूं। एक मुक्त जीव है, उनका उनको क्या बोला जाता है, वो शुद्ध सत्व के स्तर में है। ही इज ऑन द प्लेटफॉर्म मोड ऑफ प्योर गुडनेस। और नीचे कौन सा स्तर में है, सत्व रजस्तम। तो ये तीनों गुणों से परे जो मुक्त जीव है उनको बोला जाता है कि ये शुद्ध सत्व के अंतर्गत है। ये शुद्ध सत्व मतलब वो सत्वगुण जिसके अंदर रजस और तमस का कलमश नहीं है, तीनों गुणों से ऊपर है। वो तीनों गुणों से ऊपर व्यक्ति को ऐसा बोला जाता है कि वो व्यक्ति क्या है, शुद्ध सत्व में है। लेकिन जब तीनों गुणों के अंतर्गत वाले सत्वगुण का वर्णन किया जाता है तब ये नहीं समझना चाहिए कि सत्वगुण में है मतलब 100% सत्वगुण में है। उसके अंदर रजस और तमस है, खास करके उसके अंदर मैं दूसरों से अच्छा हूं, उससे मैं अच्छा हूं। जैसे आप फिलोसफर्स, प्रभुपाद उदाहरण देते, किसका, साइंटिस्ट और फिलोसफर्स, ईच इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नॉलेज एंड बिकॉज दे जनरली इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन, दे फील ए सॉर्ट ऑफ मटीरियल हैप्पीनेस। आप देखिए किसी से मिलिए, साइंटिस्ट लोगों से, फिलोसफर लोगों से, उनके अंदर एक प्रकार का अहंकार रहता है। भले ही सीधा साधन जीवन है उनका, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर यह अहंकार रहता है, मैं दूसरों से अच्छा हूं। वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। और प्रभुपाद इसका तुलना करते हैं सत्व रजस तमा को, फर्स्ट क्लास जेल, सेकंड क्लास जेल, थर्ड क्लास जेल। सोने की जंजीर है, जंजीर बोलते हैं हथेलियां, हथेलियां बोलते क्या बोलते हैं, चेन्स, उससे बंधा हुआ है, या चांदी के चेन से बंधा हुआ है, लोहे के चेन से बंधा हुआ है, अल्टीमेटली बंधा हुआ। या फर्स्ट क्लास जेल जहां सब कुछ सुविधा है उसमें रहो, या सेकंड क्लास जेल में रहो, थर्ड क्लास जेल में रहो, अंततः जेल जेल। तो केवल सत्वगुण में जीवन यापन करने से सब कुछ ठीक नहीं है, इट्स नॉट बिग थिंग। नेक्स्ट रजोगुण। रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णसंग समुद्भवम तन्निदाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनाम। बड़ी अनुवाद।
एक उनकी पुत्र रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा कृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्म में से बंध जाता
है। रजो रागात्मकम विद्धि, राग मतलब क्या है, अभी आसक्ति आकांक्षा, किसके लिए है आसक्ति, इधर खासकर इंद्रिय तृप्ति, और इंद्रिय तृप्तियों में सबसे जो एकदम टॉप मोस्ट इंद्रिय तृप्ति ऐसा भौतिक जगत में रजोगुण के अंतर्गत माना गया है, वो है पुरुष और स्त्री के बीच में सब। ये रजोगुण व्यक्ति हमेशा उसके पीछे रहता है, और उसको प्राप्त करने के लिए उसको क्या चाहिए, धन। तो धन और स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये रजोगुण है। द मोड ऑफ पैशन इज कैरेक्टराइज बाय अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमन, प्रभुपाद लिखते हैं। वुमन एज अट्रैक्शन फॉर मैन एंड मैन अट्रैक्शन फॉर वुमन, दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ पैशन। रागात्मकम डेंजरस गुण है रजोगुण, रजो रागात्मकम। कृष्ण संग समुद्भवान, कृष्ण संग समुद्भवान ये कहां से उत्पन्न होता है? ये जो सुख की अभिलाषा जो है कहां से उत्पन्न होता है? तृष्णा से उत्पन्न होता है। तृष्णा मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तृष्णा? आप जानते हैं तृष्णा, सुना है सब शब्द?
प्यास।
और मृग तृष्णा सुना है? इसका मतलब हाँ, मृग तृष्णा डेजर्ट, रेगिस्तान में जब जाओगे दूर में ऐसा दिखाई पड़ता है पानी है, तो उसे चल जाते जाओ लेकिन पानी मिलता ही नहीं है। तो ये रजोगुणी व्यक्ति का भी ऐसी दुर्गति है, वो सुख को प्राप्त करने के लिए अति मेहनत कर रहा, अति प्रयास कर रहा है, बोलता है कि बस अभी कल सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो कल कभी आता नहीं, टुमारो डजंट कम। तो इस प्रकार वो गोज ऑन सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। तृष्ण संग समुद्भवान तन निबद्धाति कौन्तेया कर्म संगेन देहिनाम। और तृष्णा के पीछे भागते भागते वो सुख को प्राप्त करने के लिए, धन को कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, कर्म। रजोगुणी व्यक्ति को पूछिए आप मंदिर आइए तो क्या बोलेंगे? टाइम नहीं है, बिजी। अब किसके लिए बिजी है? बहुत काम है। किसके लिए काम है? पैसा कमाना है। पैसा किसके लिए चाहिए आपको? अल्टीमेटली इट कम्स टू दिस, भोग। घूम फिर के वो व्यक्ति उधर ही आएगा, मैथुनागार। इस भौतिक जगत को मैथुनागार कहा गया है। ये मान सम्मान की अभिलाषा भी, ये भी रजोगुण से उत्पन्न होता है। पूरा तात्पर्य पढ़िए।
रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, ये रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वो इंद्रिय तत्व चाहता है। इस इंद्रिय तत्व के लिए वो रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है, अपनी स्त्री पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। जब सारा संसार ही निर्माधिक रूप से रजोगुणी है, आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्त नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी
उनके क्या कह रहे हैं? सत्वगुण को मिल नहीं पाते तो रजोगुणी क्या कह रहा है? रजोगुण क्या, रजोगुण क्या है आपको समझना है तो आप बॉम्बे आ जाओ, पता लगे दिल्ली जो भी है, दिल्ली से बॉम्बे में ज्यादा है। दिल्ली फिर भी लोग थोड़ा सा जल्दी आ जाते घर में, ठीक है। स्टेशन में खड़ा जाकर देखो आप बॉम्बे स्टेशन, हैरान हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो बॉम्बे पहली बार आके स्टेशन देख के उनका हालत खराब हो जाता है, सोचेगा क्या जगह है इधर,
वहां चढ़ना उतरना नहीं पड़ता था।
लेकिन हाथ पैर ठीक रहा तो अच्छा है, फिर धोती पहनी कभी मछली। फिर भी हम बतलो के एक्सपर्ट हो जाते हैं,
फिर
मैं खुद चढ़ता हूं दम। उसका एक टेक्निक है उसको कैसे संभालने का, कुछ करने के टाइम। नेक्स्ट रजोगुणा तमस।
तम
ज्ञानम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रापि तन्निवृत्नाति भारत। अनुवाद पढ़िए।
हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सत्वगुण के सर्वथा विपरीत है। सत्वगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इससे सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के पेड़ में पड़ता है वो तो पागल हो जाता है। तो पागल पुरुष ये नहीं समझ पाता कि कौन क्या है, वो तो प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वस्तु यथा तम ज्ञानावर्तकम विपर्य ज्ञान जनकम तमा। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य इसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वो भी मरेगा। मनुष्य मत्तर है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और मृत आत्मा की चिंता किए बिना धर्मिष्ठ कठोर श्रम करते रहते हैं। ये पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के कारण आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह ही भी सक्रिय नहीं रहते। ऐसे तमोगुण में लिप्त व्यक्ति को एक अन्य गुण यह भी है कि वो आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सतत निराश होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। यह तमोगुणी व्यक्ति है।
तो ये श्लोक में एक शब्द है तू, उसका क्या महत्व है? ये महत्व यह है कि पहले के दो गुणों के एकदम ठीक विपरीत है। ये कौन सा
है?
तमोगुण। सत्व रजस के ठीक ऑपोजिट है तमोगुण। कैसे मालूम पड़ रहा है? प्रमाद आलस्य निद्रा। प्रमाद वो सत्वगुण का ठीक विपरीत है। जैसे सत्वगुण व्यक्ति को ज्ञान रहता है कि देखो वो मरा तो मैं भी मरूंगा, ये सब इतना सारा भौतिक चीजों का प्रयास करके इकट्ठा करके रखने के क्या फायदा, सरल जीवन यापन करो, सुखी रहो, ऐसा सोचता है, विचार करता है। ये सत्वगुण व्यक्ति। प्रभुपाद इसको उदाहरण देते हैं कि मेरे बाबा मर गए, मेरे पिताजी बुढ़े हो गए, मरने वाले हैं, मैं भी लाइन में हूं, सब चीज का क्या फायदा, ऐसा विचार करने वाला कौन है? सत्वगुणी व्यक्ति। अभी ठीक उसका उल्टा काम करने वाला, मरा तो वो है, मैं तो जिंदा हूं और रहूंगा, ऐसा सोचने वाला कौन है? तब इसको बोलते प्रमादा। दिस कॉल्ड प्रमादा। और रजोगुणी व्यक्ति हमेशा कार्य करता रहता है, और उसका ऑपोजिट क्या है? आलसीपन, आलस्य। दूसरा ये आलस्य शब्द क्या है? रजोगुण का विपरीत शब्द है, ऑपोजिट। प्रमाद आलस्य, निद्रा ये 6 घंटे से ज्यादा सोता है। मैं भी हूं 6 घंटे ज्यादा। काफ शरीर जिसका रहता है उसको थोड़ा ज्यादा सोना पड़ता है, 7-7 घंटा कम से सोना पड़ता है। काफ पित्तवाद जिसका काफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं, इसका नींद ज्यादा आता है, तमोगुण शरीर है। लेकिन अंततः प्रभुपाद कहते हैं 6 आवर्स मैक्सिमम 7, उससे ऊपर नहीं। बुक में उन्होंने लिखा कन्वर्सेशन में एक जगह 6-7 मैक्सिमम, लेकिन मिल नहीं पाता। तो तीनों गुण से परे है प्रभुपाद जी की थोड़ी ना तुलना कर सकते हो। निद्राहार विहार काद विजित चादंत जीनो चयो षड गोस्वामी गण ऐसे वृक्षों के नीचे दिन भर रात भर जपा करते थे, सोते नहीं, हर निश जप, दिन भर जप करना, रात भर जप करना, ये षड गोस्वामी का जीवन था। जिसका भजन बढ़ जाता है, भजन में आसक्ति हो गया, उसको आज स्वाभाविक तरीके से नींद आहार ये दो चीज के ऊपर काबू प्राप्त।
भजन बढ़ने से इससे काबू जाता है या
भजन बल से भजन बल से व्यक्ति इन दो चीजों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। तो जितना वो गीता भागवत पढ़ता है, श्रवण करने में आसक्त हो जाता है, जप करने में आसक्त रहता है। परीक्षित महाराज ने कहा कि नहीं साधि दुष्सहक्षण माम त्यक्तो विभाधित हे पिबंतम तन्मुकाम भोजम हरिकथामृतम, आपके मुखारविंद से उत्पन्न हुआ जो हरिकथा है वो कब पी रहा हूं, इसलिए मुझे आप ये मत समझो कि ये दुस्सह, बहुत सहन करना बहुत मुश्किल है ये दो चीजों को, भूख और प्यास को, लेकिन फिर भी आप ये मत न भादिए तो वो मुझे बाधा पहुंचा नहीं रहा है। क्यों? आपकी हरिकथा का शरण लगा हूं। निद्राहार विहार का आदि छादन चलो प्रमाद आलस्य निद्रा तन निबद्धंती भारत। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो सत्वगुणी व्यक्ति है और तमोगुणी व्यक्ति एक ही जैसा लगता है, लेकिन लक्षण ये है सत्वगुणी व्यक्ति के अंदर ये प्रमाद आलस्य निद्रा नहीं रहता है, वो शांत बैठा रहता है, लेकिन उनके अंदर ये आलस्य नहीं है, ना प्रमाद है ना निद्रा। ये तीनों गुणों के ऊपर आधारित होके हुए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का स्थापना किया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका विभाजन कैसे हुआ है? ब्राह्मण रजस और तमस बहुत कम मात्रा में, और क्षत्रिय रजगुण और सत्वगुण थोड़ी मात्रा में है, रजस के बाद थोड़ी मात्रा में सत्वगुण है, बाद में तमस थोड़ा एकदम कम है, एकदम कम, और वैश्य तमोगुण में है, और रजस तमोगुण से थोड़ा कम मात्रा में है, लेकिन है, उसकी मात्रा भी काफी है, और सत्व है, और शूद्र तमन भरा हुआ है, रजस और सत्व एकदम कम मात्रा में, वेरी लिटिल, ठीक है। इसलिए शूद्र जो है प्रमाद आलस्य निद्रा, तमस ग्रीड, जहां लोभ है तो उधर सत्व कहां आता है, देयर इज नो सत्व। क्षत्रियों में सत्व रहता है क्योंकि वो उनका ब्राह्मणों को आदर देना और उनका बात मानना उतना तो मालूम है उनको, क्षत्रियों का क्षत्रिय जर है, और क्या सही है क्या गलत है उनके अंदर लोभ नहीं होता क्षत्रियों में, दे डोंट हैव दिस लोभ। तथार्जस तमो भाव काम लोभ आदय स्थिति, काम जो है रजोगुण है और लोभ क्या है तमोगुण, लोभ है इस तमोगुण, बहुत डेंजरस है लोभ। ये अब कामी व्यक्ति है उसको कैसी भी करके भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है, जिसके अंदर धन का जो लोभ आ गया है बहुत बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। तमोगुणी व्यक्ति को प्रवृत्त करना, यही की आचार्य हुए प्रभुपाद जी, उन्होंने क्या किया इन लोगों को भी, तमोगुण को भी उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया, ऐसे लोगों को भी मानना पड़ेगा। सॉरी पागलपन, प्रमाद जो है एग्जैक्टली सत्वगुण का अपोजिट है। सत्वगुणी व्यक्ति अपना निर्णय बराबर लेता है, कोई चीज को ऑब्जर्व करता है उसके अंदर से सार निकालता है। प्रभुपाद एक बहुत फर्स्ट क्लास उदाहरण देते हैं, बाबा मर गया, बाबा मतलब ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी भी वृद्ध हो चुके हैं, वो मैं मरने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या मैं भी, वो विचार करता है विचारवान। जो विचारवान नहीं होता है उसको प्रमाद कहा गया, वो पागल है। पागल का लक्षण क्या है पागलपंथी का, वो विचारवान नहीं होता है, वो सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता। वो व्यक्ति आगे जा रहा है, वो गड्ढे में गिर के मरा, वो गिरा ना, हाँ हंसते हुए मैं नहीं गिरूंगा जाके देखता हूं, वो पागल है उसको, यानी उनका जो बुद्धि है वो बराबर काम नहीं करता है, उसको पागल बोला जाता है। तो सत्वगुणी व्यक्ति जो है उसका बुद्धि बराबर काम करता है, ऑब्जर्वेशन उसका फर्स्ट क्लास रहता है। ठीक है, हाँ शूद्र टोटल तमोगुण, हाँ टोटल मतलब वो सत्व रजस थोड़ा सा रहता है, वैश्य में एकदम रहता नहीं करके पहले से बोल चुका हूं। कोई भी एक व्यक्ति का मात्रा एकदम कम मात्रा में रहता है,
ये
है। जो भी व्यक्ति ये तीनों में चारों में वर्णाश्रम धर्म में अगर वो शास्त्रों को नियम को पालन करते हैं, यानी शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, तो निश्चित रूप में धीरे धीरे से वो सत्वगुण में आएंगे। अगर वही शास्त्रों का अपना नियम को पालन करते कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो कोई भी वर्ण और आश्रम में हो तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी वर्ण हो कोई भी आश्रम हो, जैसे कोई गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी है, ये क्या है भौतिक डेसिग्नेशन है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जी किसका है शरीर का है। सर्वात्मा शरणम शरण्यम, एक बार शरणागत हो गया कृष्ण का, ये सब डेसिग्नेशन अपने आप खत्म हो जाता है। इससे दो प्रकार का वर्णाश्रम है, एक है दैवी वर्णाश्रम, दूसरा है असुरी वर्णाश्रम। दैवी वर्णाश्रम मतलब एक व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कृष्ण का सेवा कर रहा है, वर्णाश्रम समाचार वता समसिद्धिर हरितोषणम, हरि का संतुष्टि के लिए कर रहा है। तो ये स्तर में सभी एक ही माना जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी भगवान की, जैसे वो उदाहरण फर्स्ट क्लास उदाहरण है उसके लिए, आईआईटी है, फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में हो क्या फर्क पड़ता है, आईआईटी आईआईटी है। एक शूद्र भी महान है, क्यों, शूद्र के ऊपर युक्त कार्य कृष्ण के लिए कर रहा है ना। ब्राह्मण होने के बाद भी अगर कृष्ण की सेवा नहीं करता, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता, कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को मानता नहीं, तो क्या होगा, वो क्या फायदा, उससे अच्छा ब्राह्मण होकर इस प्रकार कृष्ण का सेवा नहीं करता, उससे अच्छा शूद्र होकर भगवान की सेवा कर, दैट इज बेटर। हाँ
रजोगुणी व्यक्ति प्राप्त करने लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उससे उत्तम कार्यों में व्यय करता है, जितने लाइफ में पड़ेगा 90% या प्रबल
90%
अग्रवाल है।
हाँ
हाँ अभी कभी वो अस्पताल खुलता है और परमार्थ संस्थाओं को दान देता है, यानी कि पैसों में रजोगुण प्रधान होता है, क्योंकि लाइफ नंबर है, खर्चवार बहुत करते हैं।
ये जो गुणों का जो मिश्रण है ना, ये बहुत रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब तुलनात्मक है, स्पेसिफिकली इतना इतना ऐसा बोल नहीं सकते। हो सकता है कि कुछ कैटेगरी है उसके अंदर थोड़ा रजस ज्यादा हो थोड़ा कम हो, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड विभाजन जो है ना, वो विभाजन इस प्रकार किया गया है। वैश्य को तमोगुण अधिकांश इसलिए कहा गया है, उनके अंदर रजोगुण तमोगुण के बाद रहता है। तमोगुण मान लीजिए 50% है, रजस जो है 40 रहता है, नहीं तो वो कार्य करेगा ही नहीं। वैश्य में शूद्र में यही अंतर है। वैश्य क्या है, कोई और निरीक्षण किए बिना वो कार्य करता है। शूद्र है वो तभी कार्य करेगा जब कोई देखता हो। जैसे लेबर है, लेबर के ऊपर अगर नजर नहीं रखेगा जाके सो जाएगा वो। लेकिन व्यापारी है, उसको लोभ भी है और साथ साथ में वो रजस है, वो लोभ को पूर्ण करने का ड्राइविंग फोर्स है। शूद्र में लोभ रहता है लेकिन रजस नहीं होने की वजह से वो सो जाता है। दैट इज डिफरेंस। तो निश्चित रूप में रजस है, ऐसे तमोगुण के नेक्स्ट में रहता है रजस। अगर रजस ज्यादा है तमोगुण कम है तो वो सोचेगा मैं क्यों काम करूं। लोभ है तभी तो नहीं नहीं इतना काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, तो बिजनेस एक्सपेंशन ही नहीं होगा। रज प्रदान है, निश्चित रूप में कर्म संगी है। सकाम कर्म और क्षत्रियों में रज प्रदान है लेकिन गुडनेस उसके नीचे है, सत्वगुण रहता है उनके अंदर। ये रजस दोनों में है, क्षत्रियों में भी है और वैश्यों में भी है, लेकिन क्षत्रियों में एक चीज नहीं रहता, वो है लोभ। दे आर नॉट ग्रीडी पीपल। क्षत्रिय प्रवृत्ति वाले जो दान देते हैं प्रवृत्ति लेके जाओ, ऐसा सोचते नहीं है कि कहां किया क्या किया, हजार प्रश्न नहीं पूछते।
एक बार मुंबई में जुहू में एक के साथ हम गए थे, द्वादश के दिन हमको आमंत्रित किया था भोजन करने। वो आदमी स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर
है, ब्रोकर ऐसे कायस्थ थे लेकिन ऐसे क्षत्रिय नहीं नहीं वो क्या है, उनको कायस्थ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो इनको ब्रिटिश सरकार के नीचे वो नौकरी करते थे, लेकिन वो थे बहुत बुद्धिमान। कुछ ब्राह्मण है क्षत्रिय है, उनमें से कायस्थ बने। आप जाइए बीरा रोड मंदिर में, हमारे कांग्रीगेशन है पटेल, उनके घर में जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा उनके घर में भी ऐसे रहेगा, लेकिन वो चुन चुन के 11 निकाल के देगा आपको।
दूता तो उसके पास भी गए थे, उसने तो थे 25,000 देने के लिए, तो दिया नहीं, बहुत उदास के साथ बाकी कितना दिया।
ओ,
मैं इसलिए कहा कि वो श्रीवास्तव था, ऐसे
ही निश्चित
थे।
हम आई ऑब्जर्व बहुत ऑब्जर्व करता हूं, जो बहुत धन है लेकिन जो लोभ होता है ना अस्तित्व में, लोभ मतलब ये समझ लीजिए बहि प्राण, भागवत में धन को बहि प्राण कहा गया है, वो उसको वो हां बोलता है लेके जाओ, उसको देना भी है लेकिन देने के टाइम ऐसा लगता है कि उसका प्राण जा रहा है, लेकिन एकदम सुखी सुखी आनंद से देने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण जो है वो लेके जाओ करके बहुत संतुष्ट खुशी खुशी देता है ब्राह्मण। ए भाई इससे ध्यान लेना, बाप रे बाप,
दान लेता
भी और देता भी
है। शायद इसीलिए कहा गया कि दान करने से ही लोग कम होता है,
तो
दान करेगा तभी उसका लोग कम,
दान करने से शुद्धिकरण आता है, मन भी शुद्ध होता है वस्तु भी शुद्ध होता है।
कौन सा श्लोक है कि अर्थ को शुद्ध करने के लिए दान देना चाहिए, जमीन शरीर को शुद्ध करने के लिए पानी का, ऐसे अलग अलग माध्यम बताया गया शुद्धिकरण।
भगवद गीता, भगवद गीता में नहीं, भागवतम में है,
अलग अलग वस्तु का शुद्धिकरण का माध्यम अलग अलग है।
ये है, कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, वेल आई हर्ड, कोई लेक्चर में सुन रहा था, मेरे पास टेप है, श्लोक है, श्लोक भी खोट गया था लेकिन अच्छा था, नोट करने का टाइम नहीं मिला, मेरे पास पेन नहीं था।
चाणक्य पंडित ने कहा है कि कोई दारिद्र्य का नाश करना चाहते हैं उसको दान देना।
अच्छा,
दारिद्र्य नाश करना जितना भी है उसमें से थोड़ा भी दान दे दे। अग्रवाल जो लोग हैं ना हमेशा भारत के साथ ही रहते हैं, दान भी करते
हैं। हाँ हाँ, उन लोगों का ऐसा है, यहाँ अग्रवाल जी तो वो भी चला
गया।
दास है अग्रवाल थे,
अभी नाम के आगे तो हट गया ना,
अभी दान आ गया, दान आ गया, अग्रवाल दान करते अभी कर रहे हो, दान हो
गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी सप्तम सुखे संज्ञायति रज कर्माणि भारत ज्ञानावृत्त तमः प्रमादे संजयच्युत। उसन मोड ऑफ गुडनेस कंडीशन हैप्पीनेस पैशन कंडीशन रूड एक्शन इग्नोरेंस कवरिंग वंस नॉलेज बाइंड्स वन टू मैडनेस। सार मैंने फिर अगेन अगेन तीनों को एक एक शब्दों के द्वारा सार, दसवां श्लोक उसके अंदर कोई एक एक शब्द में सत्व क्या रजस क्या तमस क्या बताया गया। ठीक है, रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत, रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। अनुवाद पढ़िए इसका।
हे भरत, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सत्व तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार
श्रेष्ठता
के लिए निरंतर
स्पर्धा
चलती रहती है।
हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति सत्वगुण में है, अभी इसको धक्का देने वाला कौन सा गुण है, उसको परास्त करने वाला कौन सा गुण है, तमस। क्या लिखे देखिए, रजस तमस छावि भूया तत्त्वं भवति भारत, रजस सत्त्वं तमश्चैव तमस सत्त्वं रजस्तथा। अनुवाद को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, ये तमोगुण पता नहीं चुपचाप कैसे आके बैठ जाता है सत्वगुण के स्थान में, और ये तमस को हटाने वाला कौन सा गुण है, रजोगुण। ये सीरीज है उसका, उदाहरण बताओ, पर्सनल रिलेटेड उदाहरण या सबको रिलेटेड उदाहरण। जब सत्वगुण में आप जपा कर रहे हो
یا کلاس سن رہے ہیں وہ ٹائم میں کیا آتا ہے وہ کیا ہے؟ جب کوئی جگانے کے لیے آتا ہے, جب کوئی جگاتا ہے, آپ سن بھی رہے ہوں گے کلاس لیکن اندر جاتا نہیں ہے, مائنڈ بہت چنچل رہتا ہے وہ ٹائم میں. یہ کیا ہے؟ وہ رجو گن. دیٹ از ہاؤ دا موڈس آکوپائی ایچ. تو پربھوپاد لکھتے ہیں کہ یہ تینوں گن چینج ہوتا رہتا ہے, لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایک گن کے انترگت استھت ہونا ہے وہ ابھیاس کے دوارا وہ کیا جا سکتا ہے. تینوں گن میں شریشٹھ کیا ہے؟ ستو گن. تو ستو گن میں اگر استھت رہنا ہے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا, کیا کیا چیزوں کے اوپر آدھارت ہوتے ہوئے یہ گن ہم نردھارت کر سکتے ہیں یا اس کے اندر استھت رہ سکتے ہیں. بھاگوتم میں اس کا ورنن ہے, نو چیزوں کا ورنن ہے. ایگزیکٹلی میں شلوک کر معلوم نہیں. سب سے پہلا جنم, ایکادش سنسکند میں ہنس, ہاں اس کے اندر ہے, ادھر دیکھ سکتے ہیں. سب سے مہتوپورن ہے ان سب چیزوں میں جنم. ایک ویکتی کا جو جنم پچھلے سنسکاروں سے اتپن ہوتا ہے وہ مین چیز ہے. جو جنمتا کچھ سوبھاؤ ہے, ادھکانش ستوگن یا پردھان ستوگن, پردھان رجوگن, پردھان تموگن, یہ میجر رول پلے کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے آہار, جل, کال اور سنگتی, ستھان. جیسے مان لو کوئی بہت گندا تمسک ستھان ہے وہ اس کا پربھاؤ رہتا ہے. آپ نے کچھ غلط جگہ سے آہار یا جل پی لیا تو اس کا ایک دم افیکٹ رہتا ہے. آنے کو نمن گڑوں کے ویکتی سنگ اس کے پاس بیٹھنے سے اس کا سائیکالوجی ہمارا افیکٹ کرتا ہے. بات چیت کرنے کی کیا کہنا, خالی ساتھ میں بیٹھیے, مانے کوئی ٹرین میں یا بس میں جاتے ہو ایسا ایک تمسک ایک دم ایسا ویکتی کے ساتھ میں بیٹھو وہ آپ کے اوپر بھی پربھاؤ آئے گا. خالی بیٹھنے سے وہ اور آگا انفلوئنس آتا ہے. تو بہت سارے چیز ہے لیکن نشچت روپ میں یہ جنمتہ وہ جو چیز ہے وہ جانوان ابھی پرکرتے. اتنا جان کا ارجن کرنے کے بعد بھی جو ویکتی کا جو پرکرتی ہے سوبھاؤ ہے اس کے انوسار ہی کاریہ کرتا ہے. اس لیے جو بھجن میں یوکت ویکتی ہے اس کو اتنا چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کی میں کون سے گڑ میں ہوں, میرا کیا ہے. کائن واچا منسیندریر وا وردھیاپنا وا پرکرتیر سوبھاوات کروم یجنت سکلم پرسمئی نارائنائی اتی سوپرام. پرکرتیر سوبھاوات ہر ایک ویکتی کا جنمتہ کچھ پرکرتی ہوتا ہے, کچھ سوبھاو ہوتا ہے, اس کے انوسار بھجن کرنا اتی شریشٹھ مانا گیا ہے. شریان سودھرمو وگڑا پردنماد بھیاوہ. مان لیجیے کسی کا ایک پرکار کی پروتی ہے, اسی پروتی کے انوسار بھجن کرو, کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں وہ ایسا ہے تو مجھے اس پرکار کا سوبھاؤ ہونا چاہیے, وہ کتنا بھی اوپر نیچے کو تو نہیں ہو پائے گا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو بیٹر شانتی سے اپنے پروتی کے انوسار بھجن کرتے جائیں گے, دھیرے 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 سے ساتوک گن اپنے آپ آئیں گے اور شدھ ستو میں اپنے آپ پہنچ جائیں گے. یہ بہت مہتوپورن شکشا ہے گنوں کے انترگت. اپنی پروتی کے حساب سے بھجن کرنا مطلب یہ ہے. ہمیشہ ایسا دیکھا جاتا ہے بھکتوں کے جیون میں کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے میں بھی ایسے کروں گا. ضرورت نہیں ہے, اس سے ضرور پریرنا لے سکتے ہو کہ میں اور اچھا جپ کروں گا, میں اچھا شاستروں کا ادھین کروں گا, وہ سب ٹھیک ہے. لیکن نشچت روپ میں آپ کا ایک سوبھاؤ ہے, ایک پرکرتی ہے, اس کا ایک دم وپریت جانا, ورد جانا. کچھ سمے کے لیے ناٹک ضرور کر سکتے, بعد میں پھر واپس ریٹ کم بیک سیم سچویشن. اور ہوگا بھی تو دم بہت دھیرے دھیرے ہوگا. اٹ ول ناٹ ہیپن آل آف اے سڈن. नेक्स्ट हाँ प्रकाश उपजायते ज्ञानमिता विद्या पढ़िए उसका अनुवाद।
सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
नेक्स्ट श्लोक भी पढ़िए 11 12 13 तीनों साथ में।
लोभादिरारंभ कर्म नाम समाश्रया रजस्ते तानि जायन्ते विद्धिम सर्व
अनुवाद पढ़ लें।
हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति सकाम कर्म गहन उद्यम तथा अनियंत्रित नियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। और बाद में गायक खेलने गायक जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे पुत्र
ये तीनों फिर वापस सत्व रजस तम एक प्रकार वही चीज को इफेक्ट के रूप में जब सात्विक कार्य किया जाता तो क्या होगा, रजसिक कार्य किया जाता तो क्या होगा, तमसिक कार्य किया जाता तो क्या होगा, एक सारांश से फिर से बताया गया सेम थिंग जो भी हमने डिस्कस किया उसी चीज को एक दूसरे तरीके से एक बहिरंग रूप में क्या लक्षण के रूप में प्रकाशित किया गया है। ठीक है सेम
ये सतोगुण में एक लिखा है नौ द्वार पे जो इसमें दीपित हो जाए चातुर में लिखा हुआ
क्या
में नौ द्वार हैं दो आंखें दो कान दो
नाक वो तो नौ द्वार जानते हैं सुन भी कल शाम को देवामृत क्लास में इसी बात को बता रहे थे ना नौ द्वार है ऊपर के द्वारों से अगर कोई प्राण चला जाता है तो वो ऊपर की लोक में गया समझ लीजिए नीचे के द्वारों से अगर कोई प्राण चले जाता है तो ठीक चौदह पंद्रह मृत्यु तीनों गुणों में मृत्यु किस प्रकार होता है पढ़ी
रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगनिषु जायते तथा प्रलयस्त्रमाभिर्मूलयोनिषु जायते।
दोनों का अनुवाद पढ़िएगा।
जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्त होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु होने में जन्म धारण करता है।
सिंपल उसके ठीक कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मश। सोलह सत्रह अठारह ये तीनों फिर वही चीज अगर मैं सात्विक कार्य करता हूं तो क्या होगा, रजसिक कार्य करता हूं तो क्या होगा, तमसिक कार्य करता हूं तो क्या होगा। खास करके ये जो आखिरी जो छह अध्याय है ना अभी देखेंगे बहुत जगह बार बार यही गुणों का ही आता है इतना हद तक कि आप सत्रह भी श्रद्धत्रया उसमें भी वही है। अठारह अध्याय में कितने श्लोक है तीनों गुण आहार क्या है तपस्या क्या है ये वो पूजा क्या होगा उसका तीनों गुणों के अंतर्गत दान बहुत गुणों के बारे में इतना श्लोक लिख दिए भगवान ने।
इसके पीछे कुछ ना कुछ तो उनका होगा ना क्यों बार बार कह रहे
क्योंकि
एक बार उन्होंने जब एक बार बात कह दी भगवान ने कह दी वो बात तो हुई बार बार कह रहे इसका क्या बार बार समझाना चाह रहे हैं
क्योंकि इसका जवाब आगे एक श्लोक है वो ये है नान्य गुणेभ्य कर्तारम यथा दृष्टान पश्यति गुणेभ्य परम वेत्ति मद्भाव सति गच्छति उसका जवाब ये श्लोक है।
गुणों में रहना मतलब क्या बोलिए गुणों में रहने में हम स्वयं रहते हैं या गुण के प्रभाव के कारण हम उस गुण में आते हैं।
ओ आपका मूल रूप में प्रश्न ये है कि मैं स्वयं गुणों के अंतर्गत रहने के लिए चूज किया है या गुण जबरदस्ती
हाँ,
हाँ, ये एक प्रकार जबरदस्ती है, क्योंकि आपके पहले जीवन के कर्मों के अनुसार जबरदस्ती आपको कुछ गुणों के द्वारा बंधन में डाला गया है जन्मतः। क्यों, जन्म कैसे मिला आपका? पूर्व कर्म। वो पूर्व कर्मों के हिसाब से सत्व रजस तम इतनी मात्रा में, इतनी मात्रा में इस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा करके वो उस हिसाब से आपका जन्म हुआ है। ठीक है, अंततः आपने पिछले जन्म में जो कार्य किए हैं, कुछ तो स्वेच्छा है आपके पास, वो स्वेच्छा का इस्तेमाल करके आपने कुछ गुणों के साथ ऐसा संगति करने की इच्छा जरूर प्रकट किया। ऐसा ये दोनों है। तो कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से तो फिर ये सब करने का क्या फायदा? नहीं, पिछले कर्मों का प्रभाव भी रहता है और फ्री विल स्वेच्छा ये दोनों रहता है। अगर हम ये स्वेच्छा को सदुपयोग करेंगे, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेंगे, गुणों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। और स्वेच्छा का दुरुपयोग करेंगे, वो दुरुपयोग भी बहुत प्रकार है, सात्विक रजसिक तमसिक। सात्विक दुरुपयोग करेंगे सत्व गुण ज्यादा मिलेगा आपको, रजसिक दुरुपयोग करेंगे ज्यादा आएगा, तमसिक दुरुपयोग ऐसा। और ये दुरुपयोग भी संगति की वजह से होता है। आपको अकस्मात कोई सात्विक मित्र मिला तो आपका झुकाव सात्विक चीजों के प्रति होगा स्वाभाविक तरीके से। ये सब चीज है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये क्या हो? ये जो मैं अपनी स्वेच्छा से स्वीकार किया हूं या जबरदस्ती मुझे ढकेल दिया गया है, फ्री विल है या कर्म का बंधन है, ये दोनों है। दोनों है, दोनों के हिसाब से हमारा जीवन चलता है।
तो अगर कोई व्यक्ति सदोगुण में रहने का इच्छा कर रहा है,
हाँ,
लेकिन उसे पूर्व कर्मों के हिसाब से उस पर तमोगुण का प्रभाव भार हो रहा है, भारी हो रहा है,
हाँ,
तो कैसे वो उसको बात कर सकते हैं?
हाँ, ये सात्विक व्यक्ति का जो संगति है उसको जितना घनिष्ठता से करता है, और साथ साथ में अगर एकदम तीनों गुणों से परे होना है तो निश्चित रूप में उसको तो भजन तो करना, भक्ति तो करना पड़ेगा। ही हैज टू डू डिवोशनल सर्विस। वैसे पहले अभी वो भागवत में 9 पॉइंट्स है, में से है आहार है, जल है, जितना केयरफुल रहेंगे उतना आप वो देखना पड़ेगा। जिस भागवतम है ना 11th कैंटो में वो बाद में जब प्रसाद लेके वो टाइम निकाल के दिखा देंगे, जैसे यू कैन सी 11th कैंटो में ये नेक्स्ट तो आपका प्रश्न का जवाब हो गया ना, बट ये क्यों है ऐसा, ये क्यों इतने सारे श्लोकों में राजोत्तम के बारे क्या क्यों बताया? हाँ, नेक्स्ट श्लोक 16-17
दुःखम् अज्ञानम् तमसः फलम्
तीन गुणों में व्यक्ति जीवन यापन करने से क्या क्या फल प्राप्त होगा करके तीनों, फिर वही चीजों को फिर वापस दोहरा रहे अनुवाद पढ़े हैं तीनों
का। सत्व कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी में रह जाते हैं और जो अत्यंत गहर तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं।
ये तीन प्रकार का फल है, एक तुरंत मिलने वाला फल है, एक कुछ समय के बाद मिलने वाला फल है, अगले जन्म में मिलने वाला फल है। तो ये 16वां श्लोक में तुरंत मिलने वाला फल है और कुछ समय के बाद प्राप्त होने वाला फल 17 श्लोक में है, और अगले जन्म में प्राप्त होने वाला फल जो है वो 18 श्लोक है। सिंपल जैसा 19
नान्यम गुणेभ्यः कर्ता यदास्तानि पश्यति
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं।
ये अति महत्वपूर्ण श्लोक है इसके अध्याय में, मद्भावं स अधिगच्छति। नहीं, कोई भी कार्य करते हो कुछ रिजल्ट है उसे तुरंत मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा परीक्षा देने के लिए गया, ठीक है, उसने परीक्षा अच्छा नहीं लिखा, तुरंत मिलने वाला फल क्या है, दुख हुआ उसको। कुछ समय के बाद क्या मिला फल उसका, फेल हुआ करके रिजल्ट आया, वो हुआ, और अंततः क्या है उसको फिर से वापस इस क्लास में आना पड़ा। बताए अनुवाद पढ़िए
ना।
जैसे आप पुण्य कार्य करोगे, सात्विक कार्य करोगे, फर्स्ट थिंग क्या होगा आपको, शुद्धिकरण होगा, माइंड जो है शुद्ध होता है। जैसे नहाना, नाना सुबह उठ के नहाना, ये सात्विक कार्य समझिए, करते क्या होगा तुरंत आपको फल क्या मिलेगा, तुरंत शुद्धिकरण हो गया कि नहीं। और 17 श्लोक खोलिए, हाँ, तो ये सात्विक कार्य करने से आप नहाने से तुरंत ज्ञान आ गया आपको, नहीं, तो ज्ञान को प्राप्त करने का एक ऐसा एक सिचुएशन बना ताकि आप जाके शास्त्र पढ़ो, कुछ और पढ़ाई करो तो ज्ञान आएगा। वो क्या है, कुछ समय के बाद माना सात्विक कार्य किए, सात्विक कार्य करने के साथ साथ आने वाला फल, कुछ समय के बाद आने वाला फल, अगले जन्म में आने वाला फल, ये तीन है। जैसे सुबह उठ के नहा लिया, नहाने का तुरंत क्या फल आया आपको, शुद्ध हो गए। कुछ समय के बाद शुद्ध होने के बाद शास्त्र पढ़ा, कुछ और कार्य किया, कोई चीज को अच्छी तरह से अप्रिशिएट किया, ऑब्जर्व किया, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान।
हर गुण के तीन प्रकार के फल है,
हाँ, तीन समय, थ्री रिजल्ट्स एट थ्री पीरियड्स ऑफ टाइम, ऐसा दैट इज अ थिंग। हाँ हाँ, आगे के लिए अगर वैसे ही अपने करते जाएंगे तो अगले जन्म में क्या होगा आपको, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, थ्री पीरियड्स ऑफ टाइम, इमीडिएट, इंटरमीडिएट, अल्टीमेट। विश्वनाथ ठाकुर का मैं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा हूं ये सब चीजें, क्योंकि ऐसे बताते जा रहे हैं तो हमारा तो 15 भी थोड़ा सा संक्षिप्त में करना होगा ना, जस्ट आइडिया रहेगा आपको इसलिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में ये तीन शब्दों के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, इमीडिएट, इंटरमीडिएट, अल्टीमेट। इमीडिएट समझते हैं तुरंत, इंटरमीडिएट कुछ समय के बाद, और अल्टीमेट ऊर्ध्वम गच्छन्ति, अल्टीमेट मध्ये तिष्ठन्ति जगदन्यतो गच्छन्ति। 19th
जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है।
इधर दो चीजें हैं आप ध्यान में देंगे, सबसे पहला हमको हमेशा देखना चाहिए कि नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं यथा दृष्टा अनुपश्यति। ये क्यों है इतने सारे श्लोक में सात तरह का, क्यों, क्योंकि इसके लिए अनुपश्यति का मतलब क्या है,
ठीक से देखता है।
अनु मतलब संस्कृत में हमेशा 24 घंटा, बार 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 देखना, क्या देखना, पश्यति मतलब देखना, बार बार देखना, क्या देखना चाहिए, सारे कार्यों के पीछे प्रकृति के तीन गुण हैं, एक तरीके से प्रस्तुत करना है, ना अन्य गुणेभ्यः कर्तारम्, प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा और कोई कार्य नहीं, वही चीज है, लेकिन कृष्ण का प्रस्तुत कैसे, कृष्ण कैसे प्रस्तुत करते हैं, नान्य गुणेभ्यः कर्तारम्। कोई व्यक्ति आपके ऊपर आके गुस्सा करता है, क्यों कर रहा है, गुणों के अधीन रजस तमस का कुछ प्रभाव है, उसकी वजह से कर रहा है, और कुत्ता भोग रहा है वो भी क्या है, कुछ गुणों के अधीन होके वो कर रहा है, तारामंडल घूम रहा है वो भी उसका भी कारण गुणों का कारण, सूर्य का उदय हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर एक चीज क्या है उसके पीछे, गुणों का मिश्रण, नथिंग एल्स अदर द मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर।
अगर ऐसा है तो कोई आदमी बोल सकता है कि गुना मैंने कर दिया, गुणों के अधीन होके मैंने नहीं किया गुना, मुझे माफ कर दिया।
ये भगवद गीता कोर्स में शुरुआत में यही प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है, फिर वही वही बात आ गया, कर्ता कौन है, एप्लीकेशन दिया कौन है, गुण ने दिया था, आपने दिया था ना,
स्वतंत्रता इच्छा, तो इसका मतलब इच्छा व्यक्त किया इसलिए गुण ना हो गया,
तो हाँ उस प्रकार के गुण, जिस प्रकार की आपकी इच्छा है उसी प्रकार का
गुण आने से इच्छा आ गया,
नहीं पहला वो मेजर जो इच्छा था वो कौन सा इच्छा था, मैं कृष्ण के विलग होके भोगूं, जब 15वें अध्याय में जो पानी उसका उदाहरण दिए थे ना, वो एक बार वो इच्छा कर लिया तब आपको एक नया भौतिक जगत नामक एक पिक्चर दिखाने लगे भगवान, देन द होल थिंग स्टार्ट्स। तो नान्य गुणेभ्य कर्तारम् अति महत्वपूर्ण है। पहले वैदिक शिक्षा में ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं थे जिसे आजकल लोग पढ़ते नहीं, ये डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जुआलॉजी है, बॉटनी है, नहीं था, उनको केवल यही ज्ञान देते थे सांख्य, प्रकृति पुरुष का मिलन, ये दोनों का मिलन होते हुए सारा जगत में इंटरैक्शंस हो रहा है। जो व्यक्ति ये जानता है वो हर सब्जेक्ट के ऊपर बोल सकते हैं, प्रभुपाद जी कैसे कैसे हर प्रकार के लोगों से मिले कि नहीं, वो फिजिक्स के प्रोफेसर से मिलते थे, उनको भी संतुष्ट करते थे जवाब, उनका प्रश्नों का जवाब देते थे, डॉक्टर से भी, उनको भी, फिलासफर, जर्नलिस्ट बोलो, पॉलिटिशियन बोलो, कम्युनिस्ट बोलो, हर व्यक्ति को अपना अपने ही फील्ड में, ऐसा नहीं कि जो कुछ अलग से आपको जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, उनका ही ज्ञान, उनका ही फील्ड में, न्याय शास्त्र में वाला, न्याय शास्त्र में आर्ग्यूमेंट कैसे करना चाहिए वो सब बहुत विस्तृत रूप में वर्णन है। उनमें से एक ब्रांच, एक टॉपिक है, निग्रह स्थान बोला जाता है। निग्रह स्थान मतलब मान लो कोई व्यक्ति एक 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 सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, उस व्यक्ति को उसी सब्जेक्ट के बारे में बोलते हुए उनको चुप कराना। आपको याद है प्रभुपाद जी मोटर कार रेस वाले से बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा, मैंने कहा कि मैं कार रेसिंग का चैंपियन हूं, ऐसा है क्या, तो प्रभुपाद जी कार रेसिंग के बारे में उनके साथ पौना घंटा बात किए, कृष्ण भगवत गीता भागो छोड़िए, कार रेसिंग, वो रेस में वो भाग गया था, तो ऐसा किया था, ऐसा किया था, वो व्यक्ति इतना इंप्रेस हो गया, अरे तो प्रभुपाद जी का मोटर कार रेसिंग के बारे में मेरे से ज्यादा वो जानते हैं। इतना इंप्रेस होने के बाद तो प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा मेरा एक प्रश्न है, तो सर पूछिए पूछिए, मैं बोलूंगा आपका प्रश्न का, जब आप एकदम 250 मील की स्पीड में जा रहे हो और आपको राइट टर्न लेना है, वो टाइम में आपको पता लगा ब्रेक फेल हो गया, क्या करोगे आप? तो वो टाइम में ब्रेक फेल हो गया तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, तब शुरू हो गया। तो मोटर कार रेस वाला कहां है क्या? तो ये कनेक्शन नान्य गुणेभ्य कर्तारम यथा दृष्टान पश्यति। वो प्रभुपा जी उसको कैसे इंप्रेस कर पाए? ऐसा थोड़ी ना, बचपन में मोटर गाड़ी चला रहे थे, कुछ था उनका, उसके बारे में कुछ किताब पढ़े थे क्या? नहीं। क्यों? उनको मालूम है ये जगत में गुणों के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। और इसके बारे में बात करते करते गुणेभ्य परम वेत्ति, गुणों से परे कौन है? भगवान। भगवान श्री कृष्ण कौन है? गुणों से परे हैं। इस व्यक्ति के बारे में जानने से ये दोनों, ये भौतिक जगत में गुणों के अलावा और कुछ कार्य नहीं कर रहा है, और गुणे भ्या परम, तीनों गुणों से परे भगवान के भगवत ज्ञान और ये सांख्य का ज्ञान, ये दोनों जिस व्यक्ति के अंदर है वही व्यक्ति मद्भावम सदी गच्छति, मेरे भाव को प्राप्त करता है, भगवान की धाम में आता है। जो जो सांख्य दर्शन में प्रशिक्षित है, इस जगत में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसके ऊपर बोल नहीं सकता हूं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं। देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड ऑन विच यू कैन नॉट टॉक अबाउट। कभी कभी भक्त लोग भी जब जाते हैं कॉलेजों में प्रवचन देने के लिए, मैनेजमेंट कॉलेज में जाएंगे तो मैनेजमेंट वाले बोलते हैं, अरे क्या कितना मैनेजमेंट में इतना अच्छा बोला है, आप फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे फिजिक्स, अरे ये तो फिजिक्स के बारे में और अच्छा बोल, हमसे अच्छा जानता है। ये क्यों, कैसे है? सांख्य। इससे पहले वैदिक जमाने में लोगों को कोई फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री टीचर अलग है, एक ही टीचर होता था, है कि नहीं? गुरुकुल में कितने टीचर होते थे पहले जमाने में? इज ओनली वन टीचर ना, उनको दोनों ज्ञान सिखाते थे, भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान मतलब ये भौतिक दुनिया किस प्रकार चल रहा है, सांख्य का पुरुष प्रकृति स्थो ही। तीनों गुणों के अलावा और कुछ है ही नहीं, मेडिकल है ये शरीर है ना, ये कैसे चल रहा है? तीनों गुणों के हिसाब से चल रहा है ना। तो नॉलेज थ्री मोड्स मेटेरियल नेचर, आपको जो सब्जेक्ट बोलो उस सब्जेक्ट के बारे में, एनी सब्जेक्ट।
अगर कोई बीमार है डॉक्टर या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करना है तो
मेडिकल ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अनुसार क्या है? कफ पित्त वायु तीन ही है ना, वो क्या है? सत्व रजस तमः ही है। थोड़ा सा आपको विचार करना होगा, शास्त्र थोड़ा सा गाइडेंस होगा तो अपने आप समझ जाओगे। इसलिए भक्त जो भगवद्गीता को समझता है उनके लिए ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो चीज नहीं समझ सकता। हर एक सब्जेक्ट, एवरीथिंग यू कैन स्पीक ऑन एनीथिंग, एनीथिंग अंडर प्रभुपाद। एक बार हृदयानंद महाराज से एक रिपोर्टर ने पूछा, आपको किस विषय में प्रश्न पूछे जाए? उन्होंने क्या बोला मालूम है? प्रेस रिपोर्टर्स 100 लोग बैठे थे, ही टोल्ड एनीथिंग अंडर द स्काई, इस आकाश के अंतर्गत जो सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते तो पूछो। ऐसा देरी के सब बोलना कितना, वो भी रिपोर्टर्स के सामने, उनका कितना ग्रिप होगा भागवत भगवद्गीता के ऊपर। एनीथिंग अंडर द स्काई, ऐसा कोई बोल सकता है? दैट इज अ कॉन्फिडेंस यू गेट दिस। नान्य गुणेभ्य कर्तारम यथा दृष्टान पश्यति। शुरुआत में जब मैं ज्वाइन करने वाला था वो टाइम के बाद, नहीं उस कलकत्ता इस्कॉन में जाया करता था वो टाइम में, ये बात को पढ़ा था तो इंटरव्यू वैसे पूछा कि व्हाट कैन आई आस्क यू। दयानंद महाराज ने छोटा सा बुक निकाला था उसमें, एनीथिंग अंडर द स्काई, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो कृष्ण के साथ संबंधित नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं साइंटिस्ट लोगों को, आप साइंटिस्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी साइंस आपके सब्जेक्ट के द्वारा कृष्ण को जानने के लिए प्रयास करो। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसको स्थापना करने के लिए प्रयास करो, वही आपका ज्ञान का पूर्णता है। गुणेभ्यः परम वेत्ति, मद्भावम स अधिगच्छति, इसका जरा तात्पर्य पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट. 19 का
समचित महापुरुष से केवल समझकर तथा समचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से के सारे कार्यकलापों को लांग सकता है. वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं. इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है. अंतः मनुष्य का जीवन कुमार्क में चला जाता है. प्रमाणिक गुरु के उद्देश्य से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है. वो इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वो दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है. वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वो विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है. जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वो यह नहीं समझ सकता कि वास्तव में कहां स्थित है. प्रामाणिक गुरु की संगत से वो अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और इसे समझ लेने पर वो पूर्ण कृष्ण भावना में स्थिर हो सकता है. कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति गुणों से के चमत्कार से निश्चित नहीं होता. सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वो प्रकृति के कारणों से मुक्त हो जाता है. जो व्यक्ति वस्तुओं को यथा रूप में देख कर सकता है उसको प्रकृति का प्रभाव हमेशा घटता रहता है.
हाँ, तो मद्भावम सदिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है. तो कुछ लोगों के डाउट में रह सकते, क्या जन्म मृत्यु से भी क्या परे हो जाएंगे क्या? वो बात को भी डाउट निकालने के लिए 20 वर्ष हो गया, सेम सेम चीज.
जन्म मृत्यु
जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लाने में समर्थ होता है, तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है.
सेम चीज, एक है मद्भाव सदिगच्छति, लोगों के मन में डाउट नहीं रहने के लिए कि क्या जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा क्या. हाँ, हो जाओगे, इस बात को बताने के लिए. बाद में अर्जुन का एक प्रश्न है, कह लिंग स्त्री क्या है, उनका लक्षण कैसे, तीनों अतीत प्रभो, तीनों गुणों से कैसे अतीत हुआ जाए, ऐसे कुछ प्रश्न हैं. उस प्रश्न का जवाब देते हैं और इस चैप्टर का समाप्त हो जाए. ठीक है, टुमारो कल. हाँ, जिसको आना है, हाँ जिसको, हाँ जिसको जिसको दूसरा जगह थोड़ा सा डाउट्स है कुछ है, तो 4:30 बजे,
4:30 से 5:30
तक, एक घंटे में आपको जो डाउट्स है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो तेरह जी से रिलेटेड है. हाँ,
वॉट इज रिक्वायर्ड अकाउंट.